समुद्र के बीचों बीच एक जहाज पानी में हिलोरे मार रहा था। उसकी हालत देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ ही मिनट में वो पानी के अंदर डूबने वाला था। जहाज के अंदर भी पानी भर रहा था। जहाज के किनारे लगी सलाखों पर अनन्या और इशिका हथकड़ी से बंधी हुई थीं। अनन्या और इशिका दोनों ही बेहोश थीं और अपनी आने वाली मौत से अनजान भी। अचानक पानी के कुछ छींटे अनन्या के मुंह पर आए तो उसकी आंख खुली। सिर में तेज दर्द उठने की वजह से अनन्या ने अपना सिर पकड़ लिया। वो धीरे धीरे आंख खोलने की कोशिश कर रही थी। उसे आखिरी बार जो भी हुआ था वो याद आ रहा था। रेस्टोरेंट में उस कमरे से बाहर निकलने के बाद उन दोनों को एक अजीब सी खुशबू आई थी। शायद उस खुशबू से वो दोनों बेहोश हो चुकी थी और इस वक्त दोनों मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। कुछ ही मिनट में अनन्या को पूरी तरह होश आ गया। उसने जहाज में पानी भरते देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इधर उधर देखते हुए अनन्या की नज़र इशिका पर पड़ी, जो अभी भी बेहोश थी। अनन्या उसके थोड़ा करीब खिसकी और उसे अपने दूसरे हाथ से हिलाते हुए जगाने लगी। इशिका, इशिका प्लीज उठो, हम दोनों मरने वाले हैं, प्लीज तुम होश में आओ, हमें खुद को बचाना होगा। अनन्या ने अपने हाथ में पानी लिया और इशिका के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे इशिका को होश आने लगा था। इशिका को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने अनन्या की तरफ देखा और धीरे से पूछा, हम कहाँ हैं? इस वक्त हम दोनों बहुत बड़े खतरे में हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो हमें ढूंढ लेंगे और अनजाने में मैंने उन्हें तुम तक पहुंचा दिया, मुझे माफ़ कर दो। अनन्या ने नज़रें झुकाकर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। इशिका बिल्कुल शांत हो गई थी। उसकी आंखों में इस वक्त राधिका और अभिमन्यु का चेहरा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये दोनों ही मेरे जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो क्या यही मेरी किस्मत थी कि माँ का प्यार मिलने के बाद मैं उनसे अलग हो जाऊंगी? अभिमन्यु से अलग होना मैंने खुद चुना था, पर अब उससे दूर जाने का एहसास ही मुझे तकलीफ दे रहा है। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अनन्या ने उसे पकड़कर कहा, तुम इस तरह हार नहीं मान सकती हो, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। इशिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया, फिर उसने हथकड़ी की तरफ देखा। वो काफी दुबली पतली सी थी। डांस और एक्सरसाइज की वजह से उसने अपनी बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल भी कर रखा था। इशिका ने जैसे तैसे करके अपने हाथ को हथकड़ी से आजाद करवा लिया था। फिर उसकी नजर अनन्या के हाथ पर गई, जो थोड़े मोटे थे। इशिका अनन्या की हथकड़ी खोलने के लिए इधर उधर कुछ देखने लगी। उसे एक लकड़ी का डंडा नजर आया। इशिका उस मोटे से डंडे को लेकर आई और अनन्या की हथकड़ी पर मारने लगी। उसके इतना करने के बावजूद भी हथकड़ी नहीं खुली, हालांकि वो पीटने की वजह से मुड़ गई थी। अनन्या ने देखा शिप में पानी भरता जा रहा था। उसने इशिका से कहा, देखो तुम मेरी वजह से मुसीबत में आई हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान जाए, प्लीज कुछ भी करके खुद को बचाओ, तुम्हारी जान मुझसे ज्यादा कीमती है। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी, इशिका ने सख्ती से कहा। देखो जिद मत करो, मेरी बात मानो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए अभिमन्यु से अलग मत होना, अनन्या ने उसे समझाते हुए कहा, हालांकि बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनन्या के कहने के बावजूद इशिका उसकी सुन नहीं रही थी। वो लगातार हथकड़ी को मारे जा रही थी ताकि कैसे भी करके उसे खोल सके। अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरी बात को समझो इशिका, यहाँ से जाओ, तुम्हारी जान बहुत कीमती है, जबकि मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, इशिका ने इमोशनल वॉइस में कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पति और बेटी की जिंदगी जुड़ी हुई है। सोचो कि तुम्हारे मरने के बाद उन दोनों का क्या होगा, क्या तुम्हारा पति तुम्हारे बिना रह पाएगा? अपने पति का जिक्र आते ही अनन्या के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने नम आंखों से कहा, यकीन मानो मेरे मरने पर सबसे ज्यादा खुशी उसी को होने वाली है, क्योंकि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। इस तरह तो उसका मुझसे पीछा छुड़ाना और भी आसान हो जाएगा। तो फिर अपनी बेटी के बारे में सोचो, तुम्हारे मरने के बाद उसका क्या होगा? वो दूसरी औरत तुम्हारे घर पर आ जाएगी और तुम्हारी बेटी को परेशान करेगी, क्या तुम उसके लिए नहीं जीना चाहती? इशिका ने जवाब दिया। इशिका के मुंह से अपनी बेटी का नाम सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी 2.5 साल की बेटी रूही बहुत मासूम थी। अनन्या ने खुद को सख्त किया और सिर हिलाकर कहा, हाँ सही कहा, मुझे उसके लिए जीना होगा। तुम इस हथकड़ी को नहीं तोड़ पाओगी इशिका, ऐसा करो कि तुम मेरी कलाई तोड़ दो, इससे मेरा हाथ ढीला पड़ जाएगा और तुम मेरे हाथ को आजाद कर पाओगी। बहुत दर्द होगा, पहले ही सोच लो, इशिका ने भौहें उठाकर पूछा, जिस पर अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया था। इशिका मार्शल आर्ट में अच्छी थी। उसने अनन्या की कलाई तोड़ने के बजाय उसकी दो उंगलियों को पकड़कर अजीब तरीके से घुमाया। अनन्या को अंदर से बहुत दर्द महसूस हुआ और वो जोर से चिल्लाई। अनन्या की दो उंगलियां टूट चुकी थी, जिसके बाद इशिका ने आसानी से उसके हाथ से हथकड़ी को अलग कर दिया।
अनन्या का हाथ आजाद होते ही यशिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन तब तक शिप में काफी पानी भर चुका था। अनन्या ने यशिका से कहा, अगर हम खिड़कियां तोड़कर बाहर गए तो पानी अंदर आ जाएगा और हम डूब जाएंगे। क्या हमारी किस्मत में मौत ही लिखी थी यशिका? नहीं, हम पानी के अंदर कूदेंगे, कोशिश करेंगे कि किनारे पर पहुंच जाएं, यशिका ने जवाब दिया। और फिर अनन्या का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़कर पानी के अंदर छलांग लगाती थी। वो दोनों इस बात से अनजान थी कि इस वक्त उनका शिप किनारे पर नहीं बल्कि उस विशाल समुद्र के बीचों बीच था। पानी के अंदर आते ही थोड़ी देर स्विमिंग करने के बाद यशिका एग्जॉस्ट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा है। वो स्विमिंग में अच्छी थी, फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा था। यशिका ने अपने मन में कहा, क्या मंथ खत्म होने को है? ओ नहीं, मुझे इन्फ्यूजन लेना था। मैं इस पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगी और जल्दी थक जाऊंगी। मुझे आयरन इन्फ्यूजन लेना था, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? यशिका को अपनी कमजोरी का कारण समझ आ गया था। ये महीने का वो वक्त होता था जब यशिका को आयरन इन्फ्यूजन देना होता था। हर बार की तरह उसे याद नहीं रहा और इस वक्त वो एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अनन्या तो सही से स्विम कर रही थी, लेकिन उसने देखा यशिका ऊपर आने के बजाय नीचे जा रही है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अनन्या ने सख्ती से कहा और नीचे जाकर यशिका का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लाने लगी। चोट लगी हुई होने की वजह से उसके लिए भी ये आसान नहीं था। प्लीज यशिका, थोड़ा हिम्मत रखो, वो देखो वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, हम उसके ऊपर जाकर खुद को बचा सकते हैं, अनन्या ने यशिका को हिम्मत देते हुए कहा, जबकि वो पानी में ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। यशिका ने हाँफते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। अगर तुम बच जाओ तो अभिमन्यू को कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, तुम नहीं मर सकती हो, ये मेरी गलती है जो मेरी बेवकूफी से वो लोग तुम तक पहुंच गए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरी बहन, अनन्या ने रोते हुए अपने मन में कहा। यशिका पूरी तरह अपनी हिम्मत हार चुकी थी और वो पानी के अंदर डूबने लगी थी। यशिका को लगा कि अब उसकी आखिरी सांसें बाकी हैं। ऊपर से एनीमिया की कमी की वजह से उसका शरीर और ज्यादा कमजोर हो चुका था। यशिका डूब रही थी तभी एक हाथ उसके पास आया और उसने मजबूती से उसे थाम लिया था। वो अनन्या थी। अनन्या ने हार नहीं मानी थी, वो फिर से यशिका को ऊपर लेकर आई और जैसे तैसे उसका हाथ पकड़कर उस लकड़ी के बोर्ड के पास में गई।
अनन्या ने अपना पूरा जोर लगा दिया था यशिका को उसके ऊपर लेटाने में, लेकिन अब उसमें और हिम्मत नहीं बची थी। यशिका के कानों में अनन्या की धीनी आवाज पड़ी, वो बोल रही थी, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मुझे माफ करना यशिका। यही कुछ आखिरी शब्द थे जो अनन्या ने यशिका से कहे थे। यशिका उसकी मदद करने के लिए नहीं थी क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। वहीं अनन्या का हाथ अब उससे छूट चुका था और वो समुद्र की गहराइयों में जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इस वक्त कोर्ट रूम में यशिका के आने का इंतजार कर रहा था। उसने यशिका को 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन फिलहाल 2 के बजाय 3 बज चुके थे। यशिका के न आने पर अभिमन्यु परेशान हो गया। उसने पृथ्वी से कहा, क्या वो मुझसे नाराज है? वो तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन अब खुद ही यहाँ नहीं आई। मुझे लगता है आपको सरप्राइज देने के बजाय उन्हें कॉल करके बता देना चाहिए, पृथ्वी ने कहा। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और यशिका को कॉल किया। उसका नंबर बन जा रहा था। अभिमन्यु ने दूसरे नंबर पर कॉल किया क्योंकि यशिका के पास 2 मोबाइल थे। दूसरा नंबर भी बंद था तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अभिमन्यु पृथ्वी को कुछ कहता इससे पहले उसके पास एक कॉल आया। सामने से एक आदमी की आवाज आई, मिस्टर राजवंश, आपकी पत्नी यशिका राजवंश को किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर्स ने जो भी लोकेशन भेजी थी उसके हिसाब से हम उन्हें समुद्र में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही। हमें पानी के अंदर एक जहाज मिला है, जहाज पानी के अंदर डूब चुका है। हमें शक है कि वो उसी के अंदर थी। जैसे ही अभिमन्यु ने ये सुना, एक पल के लिए उसके कदम लड़खड़ा गए थे। पृथ्वी ने अभिमन्यु से जानने की कोशिश की, पर अभिमन्यु ने उसकी बात तक नहीं सुनी। वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और तुरंत अपनी गाड़ी समुद्र की तरफ ले जाने लगा। पृथ्वी उसके पीछे गार्ड्स की गाड़ी में आ रहा था। अभिमन्यु आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसके पास में पुलिस का कॉल आया। पुलिस ने उसे कॉल पर कहा, मिस्टर राजवंश, हमें समुद्र की गहराइयों में आपकी वाइफ की डेड बॉडी मिली है। उसे ऊपर लाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे लगता है जैसे मछलियों ने उनके चेहरे को खाकर बिगाड़ दिया है। उम्मीद है आप वहां पहुंचकर उनकी चीजों को पहचान पाएंगे। कॉल के साथ ही अभिमन्यु ने एक झटके में ब्रेक लगाया और उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। उसने सिसकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मेरी यशिका नहीं हो सकती है। लगभग 3 दिन बाद यशिका इस वक्त एक लग्जूरियस कमरे में सोई हुई थी। वो पिछले 3 दिनों से बेहोश थी। यशिका की आंख खुली तो एक बार के लिए उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। कुछ देर फिर से आंखें बंद करने के बाद यशिका ने आंखें खोली तो उसने खुद को उस कमरे के अंदर पाया। यशिका ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पर आईवी लगी होने की वजह से वो उठ नहीं पाई। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि उसे आयरन इन्फ्यूजन दिया गया था। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे आयरन इन्फ्यूजन दिया गया है, इस बारे में कौन जानता होगा? क्या मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ? लेकिन ये कमरा हॉस्पिटल रूम नहीं लग रहा है। यशिका कन्फ्यूजन से इधर उधर देख रही थी। उसके कपड़े तक बदल दिए गए थे। अपने उधेड़ बुन में खोई हुई यशिका सोच रही थी कि उन पर हमला करने की आखिर किसने कोशिश की होगी और फिलहाल उसे बचाकर यहाँ लेकर कौन आया होगा। क्या उस पर हमला करने वाला ही उसे वहां लाया था? यशिका के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे।
तभी उसे अनन्या की याद आई। इशिका ने जल्दी से कहा, अनन्या, अनन्या कहाँ गई? क्या वो मुझे यहाँ लेकर आई है? इशिका के आसपास कोई नहीं था जो उसे उसके सवालों के जवाब दे सके। इशिका की जान तो बच गई थी, पर सवाल ये था कि क्या वो अब भी सुरक्षित थी या उन लोगों के पास थी जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया था।